आठवां, मलाएशिया और इंडोनेशिया में भारतीय संस्कृति का प्रथम युग। आठवीं सदी में शैलेंद्र वंश के प्रतापी राजाओं ने अपनी शक्ति का विस्तार शुरू किया और शीघ्र ही मलेशिया तथा इंडोनेशिया के विविध प्रदेशों व द्वीपों को जीतकर अपने अधीन कर लिया। इस क्षेत्र में जो बहुत से भारतीय उपनिवेश व राज्य स्थापित थे, वे सब शैलेंद्र साम्राज्य के अंतर्गत हो गए। ये शैलेंद्र राजा सांस्कृतिक दृष्टि से पूर्णतया भारतीय थे और इनके संरक्षण में भारतीय धर्मों ने अच्छी उन्नति की थी। इनके इतिहास पर हम आगे चलकर प्रकाश डालेंगे, पर क्योंकि सातवीं सदी के साथ मलाएशिया और इंडोनेशिया में उस युग का अंत हो गया जबकि वहां बहुत से छोटे बड़े भारतीय उपनिवेश व राज्य विद्यमान थे, अतः इस युग की संस्कृति पर विहंगम दृष्टि डालना उपयोगी होगा। यह युग ईसवी सन के प्रारंभ काल के लगभग शुरू हुआ था और शैलेंद्र साम्राज्य के विकास हो जाने पर इसका अंत हुआ। ईसवी सन के प्रारंभ काल के लगभग जब भारतीयों ने मलाएशिया और इंडोनेशिया के विविध प्रदेशों तथा द्वीपों में बसना प्रारंभ किया, तो ये प्रदेश सर्वथा गैर आबाद नहीं थे। यहाँ मलाया जाति के जिन लोगों का निवास था, उनके संबंध में पहले लिखा जा चुका है। इस क्षेत्र के ये पुराने निवासी सभ्यता की दृष्टि से अधिक उन्नत नहीं थे। जब भारतीय उपनिवेशकों के साथ इनका संपर्क हुआ, तो स्वाभाविक रूप से उन्होंने भारतीय सभ्यता और संस्कृति को अपना लिया। इतिहास का यह एक सर्वमान्य नियम है कि जब किसी अवनत सभ्यता का उन्नत सभ्यता के साथ संपर्क होता है, तो अवनत सभ्यता के लोग उन्नत सभ्यता को अपनाने लगते हैं और धीरे धीरे उसी को आत्मसात कर लेते हैं। इसी प्रक्रिया के कारण भारत पर आक्रमण करने वाले जो इसी शक, कुषाण, हूण आदि लोगों ने भारतीय धर्म, भाषा, संस्कृति व सभ्यता को अपना लिया और इसी कारण मध्य एशिया के तुर्क जातियां अरबों के संपर्क में आकर इस्लाम में दीक्षित हो गई थी। मलाएशिया और इंडोनेशिया में भी यही प्रक्रिया हुई। वहां के पुराने निवासी जब भारतीय उपनिवेशों के संपर्क में आए, तो उन्होंने भारत के धर्म, भाषा और संस्कृति आदि को अपना लिया और शीघ्र ही वे पूर्णतया भारतीय रंग में रंग गए। मलाया, जावा, बोर्नियो आदि के जिन राजाओं के शिलालेखों का इसी अध्याय के ऊपर उल्लेख किया गया है, जातीय दृष्टि से वे भारतीय थे या इन प्रदेशों के पुराने निवासी, यह निर्धारित कर सकना कठिन है, पर उनके अभिलेखों से यह सर्वथा स्पष्ट है कि वे भारत के राजाओं के समान संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे, यज्ञिक कर्मकांड का अनुष्ठान करते थे और पौराणिक देवी देवताओं की पूजा करते थे और दान दक्षिणा द्वारा ब्राह्मणों का सम्मान किया करते थे। यदि ये राजा जातीय दृष्टि से भारतीय नहीं भी थे, तो भी संस्कृति और धर्म में ये पूर्णतया भारतीय बन गए थे, यह सर्वथा असंदिग्ध है। बोर्नियो में मुअरा कामंग नामक स्थान से राजा मूलवर्मा के जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं, वे एक ऐसे राज एवं समाज का चित्र हमारे सम्मुख प्रस्तुत करते हैं जो पूर्णतया पौराणिक हिंदू धर्म के प्रभाव में था। मूलवर्मा द्वारा यज्ञों का अनुष्ठान किया गया था और उनके लिए यूपों की स्थापना भी की गई थी। उसने बहु सुवर्णक सदृश यज्ञ का भी अनुष्ठान किया था जो राजसुई, अश्वमेघ और अग्निष्टोम जैसे यज्ञों के समान महत्व का था और दान दक्षिणा के रूप में ब्राह्मणों को हजारों गौवें प्रदान की थी। साथ ही अन्य भी विविध वस्तुएं यज्ञों के उपलक्ष्य में उसने ब्राह्मणों को दान में दी थी। मूलवर्मा द्वारा शासित बोर्नियो का प्रदेश हिंदू धर्म का इतना महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था कि वहां वह प्रकेश्वर सदृश पुण्यतम क्षेत्र भी विकसित हो गए थे, जिन्हें वहां के निवासी पवित्र तीर्थ स्थान मानते थे। बोर्नियो के भारतीय उपनिवेशों में केवल यज्ञिक कर्मकांड का ही अनुष्ठान नहीं किया जाता था, अपितु शिव, गणेश, नंदी, स्कंद तथा महाकाल आदि पौराणिक देवी देवताओं की मूर्तियां भी पूजा के लिए मंदिरों में प्रतिष्ठापित की जाती थी। जावा और मलाया में उपलब्ध हुए शिलालेखों से यही सूचित होता है कि इन प्रदेशों में यज्ञिक कर्मकांड तथा देवी देवता प्रधान हिंदू धर्म का प्रचार था। वहां से भी दुर्गा, गणेश, नंदी आदि की मूर्तियां मिली हैं। भारत में प्रचलित पौराणिक कथाओं का भी इन प्रदेशों में प्रवेश हो चुका था। विष्णु के पदों की पूजा वहां प्रचलित थी और साथ ही इंद्र के, इरावत हाथी के पदचिन्हों की भी। शंख चक्र और गदा धारण करने वाले विष्णु त्रिशूलधारी शिव तथा कुंभो दभव अगस्त की इन प्रदेशों में उसी ढंग से पूजा की जाती थी जैसे कि भारत में। गंगा इनके निवासियों की दृष्टि में अत्यंत पवित्र नदी थी, इसीलिए जावा के तुकमस नामक स्थान से प्राप्त शिलालेखों में एक ऐसी जलधारा का उल्लेख है जो गंगा के समान पवित्र थी। सुदूर मलेशिया और इंडोनेशिया में बस जाने के बाद भी इन प्रदेशों के भारतीय उपनिवेशक अपने देश की गोमती और चंद्रभागा सदृश नदियों को भुला नहीं सके थे। इसीलिए जावा के राजा पूर्ण वर्मा ने जो नई नहरें अपने राज्य में खुदवाई थी उनके नाम गोमती और चंद्रभागा रखे थे। इन उपनिवेशों या राज्यों की भाषा शुद्ध संस्कृत थी और उसे उसी ब्राह्मी लिपि में लिखा जाता था जो चौथी पांचवीं सदियों में भारत में प्रचलित थी। इस युग में मलेशिया और इंडोनेशिया के क्षेत्र में पौराणिक हिंदू धर्म का ही प्रचार प्रधान रूप से था। इस बात की पुष्टि फाइयान के यात्रा विवरण द्वारा भी होती है। उसने जावा के विषय में लिखा है कि वहाँ पौराणिक हिंदू धर्म की ही प्रधानता थी, बौद्ध धर्म की नहीं, पर बाद में इन क्षेत्रों के प्रदेशों तथा द्वीपों में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रारंभ हुआ और सातवीं सदी के अंत तक वहाँ वह भली भांति स्थापित हो गया। जावा में बौद्ध धर्म के प्रचार का प्रधान श्रेय गुण वर्मा को दिया जाना चाहिए जो पांचवीं सदी में वहाँ गया था। उसके प्रभाव में आकर जावा की राजमाता ने बौद्ध धर्म को अपना लिया और अपनी माता के अनुकरण में वहाँ के राजा ने भी। गुण वर्मा हीनयान के मूल सर्वास्तिवाद निकाय का अनुयायी था, इसीलिए जावा तथा उसके समीपवर्ती प्रदेशों में बौद्ध धर्म में इसी संप्रदाय का प्रचार हुआ था। सातवीं सदी के अंत में जब चीनी यात्री इत्सिंग ने इस क्षेत्र की यात्रा की थी तो भारत धर्म की जड़ें वहां सुदृढ़ हो चुकी थी और अनेक ऐसे विद्या केंद्र भी वहां विकसित हो गए थे जिनमें बौद्ध धर्म की उच्च शिक्षा प्राप्त की जा सकती थी। इस प्रकार का सबसे महत्वपूर्ण विद्या केंद्र श्री विजय था। भारत जाते समय इत्सिंग 6 मास वहां ठहरा था और वहां रहकर उसने शब्द विद्या संस्कृत व्याकरण का अध्ययन किया था। भारत से वापस लौटते हुए भी वह कुछ समय के लिए श्री विजय रुका था और फिर चीन जाकर शीघ्र ही वहां से पुनः श्री विजय लौट आया था। भारत यात्रा में जो बहुत से बौद्ध ग्रंथ इस चीनी विद्वान ने प्राप्त किए थे, श्री विजय में रहकर उसने उनका चीनी भाषा में अनुवाद किया। इत्सिंग ने इस कार्य के लिए श्री विजय को क्यों चुना, इसका कारण उसने इस प्रकार स्पष्ट किया है। दक्षिणी महासमुद्र के द्वीपों के बहुत से राजा तथा सामंत बौद्ध धर्म के प्रति आस्था रखते हैं और उसका सम्मान करते हैं। उनकी मनोवृत्ति सत्कर्मों के संचय की ओर है। भोज श्री विजय नगरी में 1000 से अधिक बौद्ध भिक्षु व श्रवण निवास करते हैं जो सदा ज्ञान के उपार्जन तथा सत्कार्यों में संलग्न रहते हैं। मध्य देश भारत के उत्तरी प्रदेश में जिन विषयों का अनुशीलन व अध्ययन किया जाता है उनका अध्ययन व अनुशीलन यहाँ भी उसी ढंग से होता है। नियम आचार पूजा विधि भी यहाँ के मध्य देश के ही समान है। यदि किसी चीनी भिक्षु को बौद्ध धर्म के मूल ग्रंथों का अध्ययन करके व उन पर प्रवचन सुनने के लिए पश्चिम की ओर भारत में जाना हो तो यह अच्छा होगा कि मध्य देश जाने से पहले वह 1-2 साल यहाँ श्री विजय में रह ले। कितने ही चीनी भिक्षुओं ने भारत जाने से पूर्व श्री विजय में निवास कर संस्कृत भाषा तथा बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन किया भी था। इनमें यून की, तात सेन, चेंग कोउ, ताओ होंग और फालांग के नाम उल्लेखनीय है। श्री विजय सुमात्रा के समान जावा भी बौद्ध धर्म के अध्ययन का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था। इसीलिए हुई निक नामक चीनी भिक्षु भारत की यात्रा के लिए जाते समय मार्ग में 3 साल जावा में रहा था और वहां रहते हुए ज्ञानभद्र नामक एक स्थानीय भिक्षु के सहयोग से अनेक बौद्ध ग्रंथों के अनुवाद का कार्य भी उस द्वारा किया गया था। यद्यपि गुणवर्मा द्वारा हीनयान के मूल सर्वास्तिवाद निकाय का प्रचार किया गया था पर श्री विजय में महायान संप्रदाय का विशेष रूप से उत्कर्ष हुआ। यह बात न केवल इत्सिंग की यात्रा वृतांत से ज्ञात होती है अपितु सुमात्रा में प्राप्त एक शिलालेख से भी इसी का संकेत मिलता है। प्लेमबांग से 3 मील पूर्व में तालांग तुबो नामक स्थान पर एक शिलालेख विद्यमान है जिसमें श्री जयनाग द्वारा प्राणी मात्र के हित कल्याण के लिए बनवाए गए श्री क्षेत्र का उल्लेख है। इस शिलालेख में कल्याण मित्र, प्राणीधान, बोधिचित, रत्नयत्र, वज्र शरीर, जनवशिता, कर्मवशिता, क्लेशवशिता, अनुत्तरा भी सम्यकम संबोधि सदृश ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है जो महायान संप्रदाय के विशिष्ट दार्शनिक शब्द हैं। इस शिलालेख में जो वज्र शरीर शब्द आया है उससे यह भी सूचित होता है कि श्री विजय में महायान के उस संप्रदाय का प्रचार हुआ था जो वज्रयान और मंत्रयान के नाम से प्रसिद्ध है। बौद्ध धर्म के अनेक प्रसिद्ध विद्वान भी भारत से श्री विजय गए थे और उनके कारण इस नगरी के बौद्ध अध्ययन के केंद्र के रूप में विकसित होने में बहुत सहायता मिली थी। 7वीं सदी में आचार्य धर्मपाल नालंदा से वहां गए थे और 8वीं सदी के प्रारंभ काल में आचार्य वज्रबोधि लंका से चीन जाते हुए 5 महीने श्री विजय में ठहरे थे। उनके साथ उनके शिष्य अमोघ वज्र भी थे। ये दोनों महायान के तांत्रिक संप्रदाय के प्रसिद्ध आचार्य थे और सुमात्रा में वज्रयान के प्रचार के संबंध में इन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किया था। 5वीं सदी से मलाएशिया और इंडोनेशिया के क्षेत्र में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रारंभ हो गया था और 8वीं सदी तक वहाँ इस धर्म का प्रधान स्थान प्राप्त कर लिया था, पर इसके कारण पौराणिक हिंदू धर्म का वहाँ से अंत नहीं हो गया था। भारत के ये दोनों धर्म वहाँ साथ साथ फलते फूलते रहे और उनमें अविरोध तथा समन्वय की भावना कायम रही। मलाएशिया और इंडोनेशिया के विविध प्रदेशों तथा द्वीपों के साथ भारत का केवल धार्मिक संबंध ही नहीं था, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में भी भारत के इन औपनिवेशिक राज्यों का अपने मूल देश के साथ घनिष्ठ संबंध बना हुआ था। मलाया के लंग किया सुराज्य का इसी अध्याय में पहले उल्लेख किया जा चुका है। वहाँ के राजा ने अपने एक निकट संबंधी को जब राज से बहिष्कृत कर दिया तो वह भारत चला गया और वहाँ उसने एक भारतीय राजकुमारी के साथ विवाह कर लिया। बाद में इस बहिष्कृत कुमार को लंकियासु वापस बुलाया गया और उसे राजा के पद पर अभिषिक्त किया गया। इससे यह स्पष्ट रूप से सूचित होता है कि प्राचीन काल में भारत और मलाया में वैवाहिक संबंध भी हुआ करते थे और इन देशों में परस्पर आना जाना भी एक साधारण बात थी। मलाएशिया और इंडोनेशिया को भारतीय साहित्य में स्वर्णद्वीप कहा गया है। यह पहले प्रतिपादित किया जा चुका है। व्यापार के लिए स्वर्णद्वीप जाने वाले भारतीय नाविकों तथा व्यापारियों की बहुत सी कथाएं जातक ग्रंथों तथा कथा सरित सागर सदृश कथा साहित्य में पाई जाती है। चीनी साहित्य से भी भारत और स्वर्णद्वीप के व्यापार के संबंध में अनेक सूचनाएं प्राप्त होती हैं। मलाया में तुन सुन नामक एक राज्य था। उसके विषय में चीनी साहित्य में लिखा है कि गंगा के परे के विविध देशों के लोग व्यापार के लिए तुनसुन आया करते थे। पूर्व और पश्चिम दोनों ओर से जो व्यापारी यहाँ बाजार में प्रतिदिन आते हैं उनकी संख्या 1000 से भी अधिक होती है। सब प्रकार के बहुमूल्य पर्णे का यहाँ क्रय विक्रय होता है। भारतीय धर्मों के साथ साथ भारतीय शासन संस्थाओं तथा सामाजिक आचार विचार का भी इस क्षेत्र में प्रदेशों में प्रवेश हुआ था। चीनी साहित्य में तान तान नामक एक राज्य का उल्लेख है जो इसी क्षेत्र में स्थित था। तान तान के राजकुल को वहाँ क्षत्रिय कहा गया है और उसके राजा का नाम श्रृंग लिखा गया है। उसके संबंध में यह भी उल्लेखित है कि श्रृंग के 8 मंत्री थे जो ब्राह्मण वर्ण से लिए गए थे। वह सिर पर मुकुट धारण करता था और कंठ में मणि की मालाएं। उसके वस्त्र मलमल के होते थे और पैरों में वह चमड़ों के उपानह पहना करता था। जब उसे कहीं दूर जाना होता तो वह हाथी की सवारी किया करता था। युद्ध के समय वहां शंख और नगाड़े बजाए जाते थे। चीनी साहित्य में अनेक स्थानों पर स्वर्णद्वीप के विविध राज्यों के राजाओं राजदरबारों तथा वहां के लोगों के रहन सहन पर प्रकाश डाला गया है। इन्हें पढ़कर ऐसा प्रतीत होता है कि मानो हम भारत के ही किसी प्रदेश का वर्णन पढ़ रहे हों। खान पान भोजन विवाह आदि सामाजिक जीवन के सभी अंगों का जो रूप स्वर्णद्वीप के विविध प्रदेशों में था वह भारत से बहुत मिलता जुलता था। यह सर्वथा स्वाभाविक भी था क्योंकि भारतीयों ने इन प्रदेशों व द्वीपों में जाकर जहां अपनी स्थायी बस्तियां बसाई थी वहां साथ ही वहां के पुराने निवासियों को भी अपनी संस्कृति के रंग में रंग लिया था।